नमस्कार भारत, 16 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सीरिया में स्कूलों और अस्पतालों पर मिसाइल हमला, संयुक्त राष्ट्र ने कहा 50 लोगों की मौत। अमेरिका ने हमले की निंदा की और रूस की नियत पर उठाए सवाल। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बवाल जारी, आज भी हड़ताल पर रहेंगे यूनिवर्सिटी के शिक्षक। अदालत में हुई मारपीट पर सवालों के घेरे में आए बीजेपी विधायक ने किया अपना बचाव।
कोई दिक्कत नहीं है कानून हाथ में लेने की, हमारे कोई हमें मारेगा इसमें कानून हाथ में लेना क्या होता है। आपको अगर सर फोड़ेगा, आपको भारत माता को गाली देगा और आप पुलिस का इंतजार करते रहिए, तो आप करिए, मैं तो नहीं कर सकता।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों पर होगी ये खास रिपोर्ट, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार के साथ मैं हूं प्रभात पांडे। उत्तरी सीरिया के कई अस्पतालों और स्कूलों में हुए मिसाइल हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों पर नाराजगी जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया है। इदलिब प्रोविंस में मेडिकल चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया है कि उसके एक अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इन हमलों के पीछे अमेरिका और कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन रूस ने अमेरिका को इन हमलों के पीछे बताया। मध्य यूरोप के 4 देशों ने प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यूरोपियन यूनियन से एक बैकअप प्लान की मांग की है। प्राग में हुई एक बैठक में हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ने प्रवासियों को लेकर यूरोपीय संघ की मौजूदा नीति की आलोचना की और कहा है कि ये नीति ग्रीस और तुर्की की प्रवासियों को यूरोप से रोकने की नीति पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो उनके लिए कारगर साबित नहीं हो रही है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने आशंका जताई है कि अगर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो गया तो संघ बिखर जाएगा। रोमानिया में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से संघ में बने रहने के सिलसिले में जो बातचीत चल रही है वो बेहद अहम मोड़ में है और इस दिशा में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। टस्क ने कहा,
These are difficult but also hugely important negotiations.
ये बड़े मुश्किल लेकिन अहम समझौतों का दौर है। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के बने रहने का सवाल है, जिसका फैसला ब्रिटेन की जनता को ही करना है, लेकिन साथ ही दांव पर है यूरोपीय संघ का भविष्य, जिसे हम सबको मिलकर तय करना है, लेकिन हम इसके लिए अपनी मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों से कतई समझौता नहीं करेंगे। इस बेहद नाजुक मोड़ पर जरूरी है कि हम खुद से ज्यादा एक दूसरे की बातें सुने और समझें। ये थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन यूरोपीय संघ में बने रहने को लेकर देश में जनमत संग्रह कराए जाने से पहले संघ से कई छूटों की मांग कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने कहा है कि छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल आज भी जारी रहेगी और शिक्षक कोई क्लास नहीं लेंगे। छात्र संघ ने कहा है कि जब तक कन्हैया कुमार को रिहा नहीं किया जाता है, विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच कल दिल्ली की एक अदालत ने कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत में लिए जाने की अवधि को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की पत्नी एमेल्डा मार्कोस के जेवरों की नीलामी की जाएगी। ये जेवर 1986 में फिलीपींस के अधिकारियों ने तब कब्जे में ले लिए थे जब फर्डिनेंड को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इन जेवरों की कीमत $21 मिलियन यानी तकरीबन 144 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। BBC समाचार।
तारीख 16 फरवरी दिन मंगलवार। नमस्कार भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे थोड़ा रुककर। पहले चर्चा करते हैं सीरिया की, जहां कल रात कई स्कूलों और अस्पतालों पर हुए मिसाइल हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई है, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अमरीका ने इस हमले की आलोचना की है, साथ ही रूस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए प्रभात पांडे से।
सीरिया के अलेप्पो और इदलिब प्रोविंस में कई अस्पतालों और स्कूलों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है, जिनमें कई बच्चों समेत 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। सीरिया में काम करने वाली मेडिकल चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया है कि इदलिब स्थित उसके एक फील्ड अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रूस ने कहा कि अस्पताल अमरीकी हमले में नष्ट हुआ। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने रूस के इन दावों को नकारते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों से रूस की नीयत पर ही शक होता है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बीबीसी से कहा, हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमले असद सरकार की ओर से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कराए गए हैं और इस काम में रूसी सेना भी शामिल है। हमलों के वक्त अमरीकी सेनाओं या उनके सहयोगियों का कोई भी विमान वहां दूर दूर तक मौजूद नहीं था। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी। तुर्की की सीमा के पास स्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले अजाज शहर में भी बच्चों के एक अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। रूस और अन्य महाशक्तियों के बीच सीरिया में सीमित संघर्ष विराम के समझौते के एक दिन बाद यह हमला हुआ है। उधर रूस का समर्थन प्राप्त सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस सप्ताह प्रस्तावित संघर्ष विराम पर संदेह जताते हुए कहा है कि ये मुश्किल लग रहा है। असद ने कहा, हम लगातार सुन रहे हैं कि एक हफ्ते में संघर्ष विराम लागू हो रहा है, लेकिन कौन संघर्ष विराम के लिए माकूल परिस्थितियां एक सप्ताह में पैदा कर देगा? कोई नहीं। अगर कोई चरमपंथी संगठन संघर्ष विराम तोड़ देता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन उनसे बात करने जाएगा? मुझे तो ऐसा होना व्यवहारिक तौर पर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। संघर्ष विराम देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के ही उद्देश्य से होना चाहिए। ये थे संघर्ष विराम पर संदेह जताते बशर अल असद। सीरिया में पिछले 5 सालों से चल रहे संघर्ष में अब तक 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच सोमवार को तुर्की ने कुर्द फौजों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उन्हें सरहद के नज़दीक मुख्य शहर अजाज पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हाल के दिनों में कुर्द फौजों ने उत्तरी सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत की है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं भारत की खबरों का। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर विवाद हर दिन नया मोड़ ले रहा है। कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू के छात्रों की पिटाई हुई तो कई पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। कल कोर्ट ने कन्हैया कुमार की पुलिस रिमांड की अवधि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि शिक्षक आज भी हड़ताल पर रहेंगे। आगे के फैसले को लेकर आज मीटिंग भी बुलाई गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कन्हैया के समर्थन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। पूरी रिपोर्ट सुनिए प्रभात पांडे से।
दिल्ली की एक कोर्ट ने कल जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पुलिस रिमांड की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी और इसके बाद छात्र संघ और शिक्षक संघ ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि आज भी कोई शिक्षक क्लास नहीं लेगा। आगे के फैसले के लिए दोपहर बाद मीटिंग बुलाई गई है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजय पटनायक ने कहा,
हमारे स्ट्राइक कॉल है और स्ट्राइक कॉल के साथ हमारे 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं वहाँ सोशल साइंस न्यू बिल्डिंग के पास। उसके बाद हम लोग मार्च करेंगे। नेहरू स्टैचू है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्डिंग के पास है, वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे। फिर हम वाइस चांसलर लेटर दिए हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारी जनरल बॉडी मीटिंग भी है, तो उसी में जो भी आगे का तय किया जाएगा जनरल बॉडी मीटिंग में।
कन्हैया कुमार को जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर हुए एक कार्यक्रम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस कार्यक्रम में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे लगे थे। इसके पहले कल कन्हैया कुमार की पटियाला कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पेशी के वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद छात्रों ने आरोप लगाया कि वकीलों के एक गुट ने उनके साथ मारपीट की। पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। हंगामे की वजह से कन्हैया कुमार की पेशी संसद मार्ग थाने में हुई और जज ने वहीं पहुंचकर फैसला सुनाया। इस मामले को लेकर राजनीति का दौर कल भी जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाए और उनसे माफी मांगने को कहा।
देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अफजल गुरु का समर्थन है। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संसद पर हमले का समर्थन है क्या? और अगर ऐसा लगता है कि शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना है, देशद्रोहियों का साथ नहीं देना है, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी मांग करती है।
वहीं राहुल गांधी ने असम की एक सभा में कहा कि आरएसएस ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट की दुकान खोल रखी है। उधर इस पूरे विवाद को राजनीतिक विश्लेषक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख की वजह से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं।
देशभक्ति का मामला जब उठता है तो लोग पेट काट के देशभक्ति की बात करते हैं। जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं उनको फायदा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, और अपने आप नहीं आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी उनको फोर्स कर रही है। आपने हैदराबाद के मामले में देखा यही हुआ, जेएनयू में जब वहां पे राहुल गांधी बोलने गए तो उनके साथ और विपक्षी नेता भी बैठे हुए थे, सीताराम येचुरी भी बैठे हुए थे। तो जो अपोजिशन की यूनिटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा योगदान कर रही है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है।
विवाद के बीच राजनीतिक दलों को नफे और नुकसान की फिक्र जरूर होगी, लेकिन फिलहाल कोई भी पक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता है।
कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा भी लोगों की पिटाई करते नजर आए। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस घटना के बारे में ओम प्रकाश शर्मा से बात की।
देखिए, कोर्ट के अंदर आज पेशी थी, उस पेशी के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो बाहर काफी भीड़ थी, काफी मात्रा में पुलिस, पत्रकार और पब्लिक वहाँ खड़ी थी, जिससे सारा रास्ता अवरुद्ध था। तो उस रास्ते से जब निकल रहे थे तो जैसे ही सड़क पे आए तो वहाँ पे दो तीन लोगों का एक समूह खड़ा हुआ था, तो उसमें जो फ्रंट पे जो सज्जन थे वो जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा रहे थे। बिल्कुल जब हमने सामने आ गए तो मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये कहते ही वो और ज्यादा उत्तेजित हो गए। कहा सुनी के अंदर उन्होंने कोई चीज पता नहीं कैसे क्या किया, मेरे सर पर चोट लग गई, और उसके बाद में चोट लगने के बाद में जब वो दौड़े तो हम उनके पीछे दौड़े, और ये सारा घटनाक्रम है ये केवल इतनी ही देर का है।
इसमें आपके ऊपर भी मारपीट के आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
मुझे क्या दिक्कत है, ऐसा मेरे को कोई मारेगा मेरे को तो अधिकार है, मैं मारूंगा, मैं क्यों नहीं मारूंगा। मुझे कोई आदमी अगर मारेगा तो मैं अपने हाथ रस्सी से थोड़ी बांधूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से मारूंगा।
इस घटनाक्रम में क्या आपने भी मारपीट की थी?
मारपीट तो स्वतः जो है हाथ उठ गया, इसमें क्या दिक्कत है, मैं को मना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा सर फोड़ेगा तो मैं क्या अपने हाथ बांध लूँ।
लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से खुद ही कानून हाथ में लेना आपके हिसाब से ये ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं है कानून हाथ में लेने की, हमारे कोई हमें मारेगा इसमें कानून हाथ में लेना क्या होता है, आपको कोई चाटा मारेगा आप पुलिस का इंतजार करते रहिए, मैं तो नहीं कर सकता। आपको अगर सर फोड़ेगा, आपको भारत माता को गाली देगा और आप पुलिस का इंतजार करते रहिए तो आप करिए, मैं तो नहीं कर सकता।
तो मतलब निपटने का आपको रास्ता यही लगता है?
कोई भी रास्ता होगा तो हर सड़क पे निपटना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। मतलब जहां मर्जी आप खड़े होगा अफजल गुरु के शान में उसका महिमा मंडन करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद करेंगे, तो क्या है इस देश में हम लोग रहते नहीं क्या? अच्छा फिर उसके अंदर विरोध करेंगे सर फोड़ देगा।
लेकिन ओपी शर्मा साहब जो मीडिया के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने तो ना कोई नारा लगाया था ना कोई उन्होंने इस तरह की बात की, उनके साथ भी जो कुछ हुआ उसे आप क्या ठीक मानते हैं?
मेरे मित्र सुनो, मुझे उस घटनाक्रम का ना पता ना मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, हम उसको कंडेम करते हैं।
कई राजनीतिक दलों ने पटियाला हाउस में हुई मारपीट की कड़ी आलोचना की है। इनमें शामिल हैं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी। आशुतोष जेएनयू के छात्र भी रह चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि वो कोर्ट में मीडिया और छात्रों पर हुए हमले को किस तरह देखते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश की अदालत अगर सुरक्षित नहीं है और वहां अगर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे पहुंचकर अगर पत्रकारों की पिटाई करते हैं और उन लोगों की पिटाई करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए थे, तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के ऊपर तानाशाही और फांसीवाद लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है और बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको जबरदस्ती हिंसा के बल दबाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि यह देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है।
आप चूंकि जेएनयू के छात्र भी रहे हैं और आप पत्रकारिता भी आपने दशकों तक की, अब राजनीति में भी है, तो जेएनयू पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से एक संस्थान को राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बताया जा रहा है, पूर्व छात्र होने के नाते इस पर कितनी राजनीति हो रही है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 साल तक रहा और मैंने कभी भी वहाँ इस तरीके का एक भी एलिमेंट नहीं पाया जो ये कहे कि इसको हिंदुस्तान से प्यार है। ये जो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो है वो आतंकवादियों का अड्डा है, नक्सलियों का अड्डा है, ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत जेएनयू की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेएनयू ने हमेशा से आरएसएस का जो हिंदुत्व विचारधारा है उसको रिजेक्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ जेएनयू नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर कोई राष्ट्रविरोधी नारे लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, और अगर देश के टुकड़े की बात करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन चंद दो तीन लोगों की वजह से पूरी जेएनयू की तस्वीर इस तरीके से पेंट करना, और वहां के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार को, जिसके खिलाफ एक भी सबूत अभी तक पुलिस पेश नहीं कर पाई है, उसको गिरफ्तार करना राष्ट्रद्रोह के मामले में, ये एक गंभीर समस्या है। और गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि जहां जहां भी आरएसएस और बीजेपी को लगता है कि उनकी हिंदुत्व की विचारधारा को रिजेक्ट किया गया है, ऐसे तमाम संस्थानों, व्यक्तियों और संगठनों को खराब बर्बाद करने और उनको नष्ट-नाबूद करने की कोशिश बीजेपी आरएसएस की तरफ से मोदी सरकार के इशारे पर हो रही है।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन हलचलों पर रहेगी हमारी नजर।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग को लेकर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की मतगणना भी आज ही होगी। सीपीएम की केंद्रीय समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के साथ समझौते पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ज्यूरिक में पूर्व फुटबॉलर मिशेल प्लातिनी की अपील पर फीफा के जज आज सुनवाई करेंगे।
केंद्र सरकार ने देश के सबसे साफ शहरों की सूची जारी कर दी है। सफाई के लिहाज से टॉप 10 शहरों में महाराष्ट्र और गुजरात के 2-2 शहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी सफाई के मामले में पहले 50 शहरों में भी जगह नहीं बना सका है। एक रिपोर्ट के साथ हैं हरिता कांडपाल।
नाउ आई वुड लाइक टू लिफ्ट द कर्टन ऑफ सस्पेंस एंड कम टू द रिजल्ट्स ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2016। The top 10 cities in the country in the order of merit, Mysore in Karnataka.
ये हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जो कल 2016 के स्वच्छ सर्वेक्षण का ऐलान करते हुए मैसूर को बधाई दे रहे थे। स्वच्छता सर्वे में लगातार दूसरे साल कर्नाटक के इस शहर ने पहला पायदान हासिल किया है। राजधानी दिल्ली इस सर्वे में चौथे स्थान पर रही। वेंकैया नायडू ने सबसे साफ शहरों के नाम इस क्रम में बताए।
सेकंड चंडीगढ़, थर्ड तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, फोर्थ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल नेशनल कैपिटल टेरिटरी, फिफ्थ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश द कोस्टल सिटी।
छठे पायदान पर गुजरात का शहर सूरत रहा। सातवें नंबर पर गुजरात का ही शहर राजकोट रहा। सिक्किम का गैंगटॉक 8वें, 9वें नंबर पर महाराष्ट्र का पिंपरी और 10वें नंबर पर महाराष्ट्र के ही ग्रेटर मुंबई को जगह मिली। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस बार भी टॉप 10 साफ सुथरे शहरों में जगह नहीं बना सका। उसे 73 शहरों की लिस्ट में 65वां स्थान मिला। वाराणसी के मेयर राम गोपाल मोहिले इसे लेकर निराश हैं। हालांकि मोहिले का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी का सांसद बनने के बाद शहर की सूरत सुधरी है। वो कहते हैं,
बनारस में सफाई हुई है, उनके मानक क्या नहीं आते, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, क्योंकि बनारस बहुत ही डेंसिटी वाला शहर है। 365 दिन 165 त्योहार, 5 लाख की आबादी का शहर था, 25 लाख आबादी रह रही है। लेकिन 2014 के मोदी जी के सांसद होने के बाद जिस तरह से 80 घाट में स्वच्छता शुरू करी, जो 30 साल से लोगों ने नहीं देखा था, आज उस घाट की स्वच्छता हुई। शहर में आने वाला सैलानी भी सफाई के बारे में बोल रहा है।
सबसे गंदे शहर की बात करें तो ये है झारखंड का धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और 2019 तक देश को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य तय किया है।
और अब समय है विशेष रिपोर्ट का। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 2013 में हुए दंगों ने न जाने कितनी जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। शरणार्थी शिविरों में रहने वाले के लिए अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटना एक सपने की तरह है। किसी के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। किसी को मुआवजा नहीं मिला है तो कोई उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहा है। शामली जिले के कांधला में बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने एक ऐसे ही कैंप का जायजा लिया।
कोई 10 साल की मुस्कान अपने पड़ोस की आपा के साथ बैठकर धागे में मोतियां पिरो रही है।
ये क्या बना रही हैं आप?
बेल बना रही, 1 रुपया मीटर।
बेटी को भी ये करवाती हैं?
नहीं जी, वो तो सिलाई का काम करे।
नहीं ये जो है,
ये तो वैसी लग रही बच्ची।
अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा?
मुस्कान।
क्या करती हो?
मस्जिद में जाती है।
वो स्कूल नहीं जाती है बल्कि यहीं की एक मस्जिद में पढ़ने जा रही है।
आज
ये है कैराना की आर्यपुरी पंचायत के पास बसी मुनव्वर हसन कॉलोनी, जहां पिछले 3 सालों से रह रहे बच्चे अब स्कूल नहीं जाते। मुस्कान की माँ आमना बताती हैं कि कभी उनकी बेटी भी पढ़ाई में काफी अच्छी हुआ करती थी।
इंग्लिश में भी आ गए थे जी सर, लिखना भी आ गया था जी सर, उससे 4-3 तो जी हो फिर जी भी उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे जी। और जो बड़ी लड़की आ जी, वो मेरी 3री क्लास में थी, उसका भी जब ये स्कूल छूट गया था जी। हम चाहते हैं जी हमारे बच्चे पढ़े, हम तो ना चाहे जी यहाँ स्कूल बन जावे, बच्चे पढ़े, सबके बच्चे भी हो रहे जी। जी पढ़ लिखे चाहे शादी करने चल जाओ कहीं भी, कहेंगे आपके बच्चे कितने पढ़ रहे, कहेंगे एक भी नहीं पढ़ रहा, कौन शादी करेगा इनके साथ जी, कोई करने का नहीं, बच्चे कामयाब नहीं होने के।
दंगा पीड़ितों के बीच काम कर रहे अफकार नाम के सामाजिक संगठन के अख्तर अकरम कहते हैं कि आसपास स्कूल नहीं होने की वजह से इस बस्ती के बच्चे शिक्षा से महरूम हैं।
वही कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, क्योंकि जा नहीं पाते स्कूल, यहाँ प्राइमरी है नहीं। कई बार एप्लीकेशन भी लगाई कि भाई शिक्षा का इंतजाम करो, यहाँ स्कूल भी बन सकता है अगर सर्व शिक्षा अभियान से बना दीजिए, किसी से बना दी।
इस कॉलोनी में 2 तरह के बसेरे हैं, एक वो जो ईंटों के बने हैं जिसे सामाजिक संगठन ने बनवाया है, और दूसरे वो हैं जो झोपड़ियां हैं। ये उन लोगों की बस्ती है जिन्हें 3 सालों में कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ के रहने वाले मोहम्मद शाहिद बताते हैं कि उनका नाम मुआवजे की सूची में सबसे ऊपर था।
हमारा मुआवजा सबसे शुरू में था जब हमें उन्होंने वकीलों ने कहा कि तुम्हारे एफिडेविट 39 जमा हुए। मुजफ्फरनगर जिले में रतनपुरी थाना पड़ता है, तो वहाँ पे 39 हमारे गाँव घर थे, 39 घरों
पूरे खाली हो गए।
हाँ सब खाली हो गया था उस टाइम पे, 3 घर बच गए थे।
यहीं 70 साल की हफीजन भी रहती हैं, जो दंगों के बाद से इसलिए सदमे में हैं क्योंकि अपने पैदा होने के बाद से उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था।
मन नहीं कर रहा, मन जो हो रहे बेईमान हो रहे जी, भाई फिर न कर दगा, कोई रात को आ जा, दारू बात ज्यादा हो रहे गामों में, परेशानी परेशानी जी गामों में भी। पर 3 साल तक जिंदगी बिरानी है जी, नहीं ठीक नहीं लग रहा, मन मिटाऊ हो रहे, फसुस्त हो रहा जी, जो काट पीट चली हुआ पहले तो कभी हुए ही नहीं। ये भी ये 3 साल हो लिए लिकड़ू को करता, पर ये एंड का पता नहीं के मामला जुड़ा ही कहाँ तक चले, कहाँ लो आली बच्ची, हमें तो यही परेशानी है भाई, ये झोपड़े बन जा अपना रो जाएंगे।
मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे संगठन जमीयते इस्लामी हिंद के हकीमुद्दीन कहते हैं कि मुआवजा सिर्फ 9 गांवों के लोगों को ही दिया गया है।
मुआवजा तो सिर्फ 9 गांवों के लोगों को दिया गया है, उनमें पहले मरहले में जो सर्वे में आ गए थे तो 5-5 लाख रुपए उनको दिया गया, बाकी।
हकीमुद्दीन का कहना है कि बागपत में दंगा तो नहीं हुआ मगर दहशत की वजह से लोग अपने गांव छोड़कर भाग आए, जिन्हें बसाना भी जरूरी है।
ये लोग हैं जो जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, या बागपत जिसको फसाद में शुमार ही नहीं किया गया, और वो लोग दर दर भटक रहे हैं, और कभी उनको कहते हैं कि फकीर लोग हैं, कभी कहते हैं कि जमीन के माफिया लोग हैं, तो इनका काम ही यही है जहाँ पड़ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, सही तरह से उसका सर्वे होना चाहिए था, सर्वे होने के बाद उनको सही उनके मुआवजे का फैसला करते हैं।
फुगाना के रहने वाले फुरकान उस दिन को याद कर सिहर उठते हैं जब उनके गाँव में दंगा भड़का था मगर इन्हें भी कोई मुआवजा नहीं मिला है।
एक जैसे दोपहर के टाइम वहाँ से झगड़ा होया और उधर दूसरी गाड़ से हम भाग के निकल गए, और उसमें मरे हुए के भी गले में रस्सी गिर गया खेचो फिर।
अपने गांवों को छोड़कर 3 साल से झुग्गियों में रहने वालों के सामने बड़ी चुनौती है बीमारियों से संघर्ष करना, क्योंकि उनके लिए आसपास कहीं भी शौचालय नहीं बनाए गए हैं। वसीला को अब बड़ी हो रही बच्चियों की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है।
बाथरूम कितनी परेशानी थी, यहाँ जो आस पास में टट्टी होने गए लैटिन होने गए तो लोगों ने पीछा करा, लैटिन होने लग रहे और रतबट्टी लैटिन करा लग रही, टंडा लेकर पीछा भाग लिए।
3 साल एक लंबा अरसा होता है। मुनव्वर हसन कॉलोनी की तरह ही दंगा पीड़ितों की इस इलाके में कई बस्तियां हैं। यहाँ के बाशिंदों को या तो अपने गाँव वापस लौट जाना चाहिए था या फिर उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए थी, मगर इन कैंप वालों को बस सिर्फ उम्मीद के सहारे ही दिन गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सलमान रावी, BBC, कांधला, उत्तर प्रदेश।
और अब अखबारों की समीक्षा के लिए प्रभात पांडे आ चुके हैं स्टूडियो में। जी प्रभात
जी। पंकज जी, पूरे सभी हिंदी या अंग्रेजी जो भी अखबार हैं जेएनयू की खबर से पटे पड़े हैं। द इंडियन एक्सप्रेस इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी हेडलाइन है लॉयर्स बीजेपी एमएलए टेक लॉ इन देयर फिस्ट्स, और एक बड़ी दिलचस्प एक्शन से भरा हुआ फोटो छपा हुआ है जिसमें एक सीपीआई के नेता हैं जो दिल्ली की पटियाला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में। वो जमीन पर लेटे हुए हैं और बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश शर्मा उनके सीने पर चढ़े हुए हैं और उनका कॉलर पकड़े हुए हैं। वो
और तर्क भी दे रहे थे आज
जी वो इस पिटाई को जो है वो जस्टिफाई ठहरा रहे थे। द टेलीग्राफ की हेडलाइन है राजनाथ सीज हाफ इज हैंड इन जेएनयू, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जेएनयू में जो भी घटना हुई उसको हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जेएनयू की घटना को प्रमुखता से छापा गया है, स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट थ्रेस्ड बाय लॉयर्स इन कोर्ट एज कॉप्स लुक ऑन, यानी कि पुलिस
जो है वो खड़ा मुख दर्शक थी वहां।
जी। नई दुनिया ने हेडलाइन बनाया है जो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं, उन्होंने ब्लॉग लिखा था
और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने शाम को,
और राहुल गांधी से उन्होंने पूछा कि क्या अफजल का समर्थन है राष्ट्रवाद, इसको नई दुनिया ने हेडलाइन बनाया है। हिंदुस्तान ने भी जेएनयू की घटना को हेडलाइन बनाया है, जेएनयू की जंग देशव्यापी हुई। इसके अलावा आपकी जहां आप रहते हैं गाजियाबाद, वहां की जो ये स्नैपडील की अधिकारी हैं दीप्ति सरना, उनकी किडनैपिंग की घटना को, क्योंकि ये बड़े फिल्मी अंदाज में हुई, इनके किडनैपर ने कहा कि वो डर के शाहरुख खान से प्रभावित था, उसको हेडलाइन बनाया है।
5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है
जी। और ये जो सबसे साफ शहर को लेकर जो सर्वे हुआ था उसमें जो शहरों के नाम डिक्लेयर हुए हैं, मैसूर एक बार फिर लगातार दूसरे साल सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के तमाम दावों के बीच उनका खुद का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो है वो बहुत पीछे है, 50 शहरों में भी जगह नहीं बना पाया है। दैनिक भास्कर में भी इसी तरह की खबरें हैं, जेएनयू की खबर को हेडलाइन बनाते हुए उन्होंने लिखा है देशद्रोहियों को संरक्षण दे रहे हैं राहुल या अमित शाह ने जो कहा राहुल गांधी के बारे में उनके बारे में। और इसके अलावा सलमान खान से जुड़ी हुई एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सलमान खान का हिट एंड रन केस था उसको लेकर जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी,
दायर की गई थी, उसको
खारिज कर दिया गया है। यानी सलमान खान के सितारे इस वक्त वाकई बुलंदी पर हैं, उनकी फिल्में हिट हो रही हैं और संसद और जो कोर्ट में भी वो एक के बाद एक लगातार उनके लिए राहत की खबरें आती जा रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका। और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। ऑस्ट्रेलिया ने कल वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच को चौथे ही दिन अपने नाम करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड को एक पारी और 52 रनों से मात दी। पहली पारी के आधार पर 389 रनों से पिछड़ी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 327 रनों पर समाप्त हुई। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल रांची में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंकाई महिला टीम को 107 रनों से मात दी। वहीं बांग्लादेश में समाप्त हुए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत भले ही वेस्ट इंडीज से 5 विकेट से हार गया, लेकिन भारत के सरफराज खान पूरे टूर्नामेंट में एक सितारे की तरह चमके। उनकी बल्लेबाजी को लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं
पूरे टूर्नामेंट में बड़े ही कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं और उनमें एक झलक जो नजर आती है, मैं तो कहूंगा एक तो मुझे जावेद मियांदाद की झलक नजर आती है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है।
वैसे सरफराज खान मुंबई के अलावा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेलते हैं।
और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, समय है प्रमुख समाचारों का।
उत्तरी सीरिया के कई अस्पतालों और स्कूलों में हुए मिसाइल हमलों में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। मध्य यूरोप के 4 देशों ने प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यूरोपियन यूनियन से एक बैकअप प्लान की मांग की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने आशंका जताई है कि अगर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो गया तो संघ बिखर जाएगा। रूस में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 2 भारतीय लड़कियों की आग में जलने से मौत हो गई है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने कहा है कि छात्र संघ कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल आज भी जारी रखेगा और शिक्षक भी कोई क्लास नहीं लेंगे। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।